प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 26 सितंबर 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मित्रों विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का भी जिन्होंने एकेडमी की अभी अक्टूबर नवंबर में होने वाली 15 दिन की क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका नाम है नीता जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से हैं। तो नीता आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम लोग मुख्य विषय के रूप में थोड़े से एक अलग ही तरह के मुद्दे पर बात करेंगे और उसका संबंध इस बात से है कि न्यूज में आपने सुना अखबारों में आज आपने पढ़ा भी होगा कि प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक सलाहकार समिति का गठन किया है। हम आर्थिक सलाहकार समिति पर बात नहीं करेंगे। आर्थिक सलाहकार समिति के माध्यम से हम कुछ पॉलिटी पर बात करेंगे राइट। तो चलिए जब इसके बारे में मैं ज्यादा विस्तार से तब बताऊंगा जब हम इस विषय पर आएंगे और मैं बहुत जल्दी इस विषय पर आने वाला हूं क्योंकि न्यूज में भी कुछ खास है नहीं लेकिन फिर भी एक दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो खैर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और वह है प्रधानमंत्री जी ने अभी जब ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के का जो भवन है नए भवन के उद्घाटन अवसर पर गए थे और वो बेसिकली जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हैं उनकी 100वीं जयंती भी थी तो उसमें उन्होंने एक शुभारंभ किया है कार्यक्रम का शुभारंभ किया है जिसका नाम है सौभाग्य जिसके डिटेल में है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। देखिए नाम से ही बहुत स्पष्ट है कि जिन घरों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है उन घरों तक बिजली पहुंचाई जाए इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया है और इस प्रोग्राम का नाम है सौभाग्य। अक्सर ये देखा गया कि पिछले दो साल का जो अनसॉल्व्ड पेपर है प्री की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें इस तरह की जो योजनाएं होती हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। हालांकि बहुत ही प्राइमरी लेवल की बातें पूछी जाती प्राथमिक स्तर की यानी कि किससे संबंधित है इसमें क्या किया जाता है मतलब उसके बहुत डिटेल में या उसके बहुत ही बारीक या उसकी गहराई में बारीकी और गहराई में नहीं जाया जाता एक सामान्य जानकारी कि आपको है या नहीं। तो सौभाग्य कार्यक्रम के बारे में आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जिन घरों में बिजली नहीं पहुंची है उन घरों में बिजली पहुंचाना। याद रखिए कि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये घर की बात हम कर रहे हैं गांव की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक कैलकुलेशन है 2011 का जो हमारा जनगणना है कि लगभग 4 करोड़ घर अभी ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है और आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने लगभग 2.5-3 साल पहले ही ये घोषणा की थी कि अभी शायद ये लाल किले से ही उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे यहां भी 18,000 गांव ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची है। तो गांव 18,000 है लेकिन घर 4 करोड़ है। यहां इस बात पर में फर्क है कि हो सकता है कि गांव में तो बिजली पहुंच गई हो लेकिन वो जो घर में रहने वाला व्यक्ति है वो बिजली का कनेक्शन न ले पाया हो न ले सक रहा हो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो बिजली के कनेक्शन का भुगतान कर सके और फिर हर महीने बिजली का भुगतान कर सके। तो ऐसे घर है 4 करोड़ और सरकार उनको उनके घर में बिजली पहुंचाएगी फ्री में बिजली पहुंचाएगी और इसके लिए बाकायदे 16,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं और ये इस काम को मार्च 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा यानी कि लगभग 1.5 साल में इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा ये लक्ष्य रखा गया है। तो मित्रों यह है योजना के बारे में। अब आप देखिए कि यहां एक थोड़ी सी मैं और दूसरी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहला तो यह है कि ONGC का जो नया भवन है उसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऊर्जा भवन। ये आपको मालूम होना चाहिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऊर्जा भवन। हालांकि ऊर्जा के नाम से पता लग जाता है लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दे सकते हैं कि ये विद्युत का केंद्र है और उससे जुड़ी हुई दूसरी चीजें भी बताई जा सकती हैं लेकिन ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का नवीन भवन है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न हो। दूसरी बात यह है मित्रों अगर आपने कल प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना हो जो लाइव टेलीकास्ट हुआ है तो उसमें उन्होंने बिजली के बारे में बहुत विस्तार से बताया है और खासकर कि विद्युत के क्षेत्र में भारत की अब तक क्या उपलब्धियां रही हैं। अब तक के ज्यादातर उसमें तीन साल के दौरान की स्थितियों का वर्णन था कि उसमें उज्ज्वला योजना के तहत ये किया गया और इतने विद्युत बल्ब बांटे गए और अक्षय ऊर्जा के लिए हम सस्टेनेबल जिसको कहते हैं डेवलपमेंट के तहत जो ग्रीन एनर्जी कहलाता है हम ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने काफी विस्तार से वो बातें बताई हैं और अगर आपने उसे सुना हो तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी क्योंकि वो सरकार के द्वारा दिया गया आंकड़ा है, कहा कही गई बातें हैं। तो डेफिनेटली सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए जो सबसे रिलायबल सोर्स हो सकता है वो गवर्नमेंट ही हो सकती है। हाँ, जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप अपनी तरफ से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, यहां मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा जो अखबारों में इस बीच में आई है लेकिन न्यूज में वो नहीं आ पाए कि हम अक्सर विंड एनर्जी की बात करते हैं, ज्वारभाटा समुद्र की लहरों से ऊर्जा प्राप्ति की बात करते हैं, है ना, इन सबसे हम एनर्जी की बात करते हैं। एक और एनर्जी की बात होने लगी है और काफी जोर शोर से होने लगी, वो है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी को आप हिंदी में कह सकते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा यानी कि पृथ्वी के लगभग अगर हम 3-4 किलोमीटर अंदर चले जाएं, गहराई में चले जाएं, जिसे हम पृथ्वी का क्रस्ट पार्ट कहते हैं। आपको मालूम है ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी के 3-4 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है ऊपर का उसे क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे जब हम और पहुंच जाते हैं तो उसे मेंटल कहते हैं और जब नीचे पहुंच जाते हैं तो उसे आउटर कोर कहते हैं और जब एकदम सेंटर में पहुंच जाते हैं तो उसे इनर कोर कहते हैं। तो ये चार भागों में पृथ्वी के अंदर गहराई वाले हिस्से को ज्योग्राफी के तहत डिवाइड किया गया है। तो ये ऊपर का ही हिस्सा 3-4 किलोमीटर पर, तो वहां जो ताप है, एनर्जी है, टेम्परेचर है, दो रूपों में मौजूद रहती है। एक तो चट्टान गर्म है तो आप उस गर्मी को इलेक्ट्रिक में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं, और दूसरा है पानी। गर्म पानी अगर है तो उसे भी इलेक्ट्रिक में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, भारत ने 5 साल में यानी कि 2022 तक जियोथर्मल से 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है और इस पर काम भी शुरू हो गया है। इसके लिए पूरे देश के 340 जगहों की पहचान कर ली गई है जिनमें से स्टेट हैं, कुछ मैं आपको नाम बता देता हूं। जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इसमें इंक्लूडेड हैं। देखिए, अक्षय स्रोत है, अगर आप भूतापीय ऊर्जा बना लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तो कभी खत्म न होने वाली है सौर ऊर्जा की तरह। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा कि इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है, खासकर देखिए कि जब आप कोयले से बनाते हैं तो इसे नहीं के बराबर निकलेगी। अभी इसमें एक जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो ये है दोस्तों कि ये अभी बहुत महंगी पड़ रही है, मतलब 12 रुपये पर यूनिट, मतलब ये काफी महंगी है। धीरे धीरे लेकिन जब इस पर रिसर्च होंगे तो सस्ती होती चली जाएगी। आप देखिए, पहले सौर ऊर्जा कितनी महंगी पड़ती थी, अब धीरे धीरे हालत यह हो गई कि सौर ऊर्जा तो जो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक है और थर्मल पावर है इनसे भी अब कंपटीशन करने लगी है। तो धीरे धीरे रिसर्च होंगे, नई नई चीजें आएंगी तो डेफिनेटली ये सस्ती भी होगी। और एक अच्छी बात इसकी है कि जब हम भूतापीय ऊर्जा बनाएंगे तो उसके लिए कम जमीन की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये माना गया है कि 1 मेगावाट का अगर प्लांट लगाना है तो उसके लिए हमको 1.25 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी, जबकि अगर सोलर प्लांट लगाना हो तो 1 मेगावाट के लिए हमें 5-8 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। तो उस रूप में भी ये फायदेमंद है। तो दोस्तों, इसके बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं आर्थिक सलाहकार समिति के बारे में, आइए तो कुछ बातें करते हैं। देखिए, आप पॉलिटी को समझिए, पॉलिटी को समझना बहुत जरूरी है जो जनरली आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलता है। देखिए, हमारी जो लीडरशिप होती है या पूरा का पूरा हमारा जो प्रशासन है कह लीजिए, जिसे आप कार्यपालिका कहते हैं, कार्यपालिका के जो बिल्कुल टॉप पर हैं वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, है ना, जन प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें जनता चुनती है। टॉप पर जैसे हम प्रधानमंत्री को लें तो प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुने गए हैं। सर्वाधिक जो सबसे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो लेने हैं देश के बारे में, जैसे सरकार के निर्णय आप कहते हैं तो वो कैबिनेट लेती है। कैबिनेट यानी कि मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स हैं या मंत्रिपरिषद पूरा का पूरा कह लीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह लीजिए, ये मंत्रालयों के हेड होते हैं। तो ये भी जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो ये जनप्रतिनिधि हैं। उनके नीचे फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है ना, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था पूरी की पूरी आती है, जिसे आप सरकारी अधिकारी और कर्मचारी कह सकते हैं। तो इन दोनों से मिलकर के कार्यपालिका का निर्माण होता है। मित्रों, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, देखिए बेसिकली पॉलिटिकल लीडर्स यूं कह लीजिए कि वो सामान्य है, वो किसी चीज के एक्सपर्ट नहीं है, किसी विषय के एक्सपर्ट नहीं, यहां तक कि वो प्रशासन के भी एक्सपर्ट नहीं है। वो तो जनता के बीच से आए हुए हैं और जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है। जनता ने जिस आधार पर चुनकर भेजा है वो आप जानते हैं, उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है, जो उनका घोषणा पत्र है, उसके आधार पर चुनकर के जनता उन्हें भेज देती है। लेकिन इनकी इस मायने में विशेषज्ञता होती है कि ये जानते हैं कि हमारे लोगों को किस चीज की जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत है, इस मायने में ये विशेषज्ञ होते हैं। प्रशासन इस मायने में विशेषज्ञ नहीं होता। जो प्रशासक होते हैं वो तो देखिए 20, 22, 25, 27 साल की उम्र में सरकारी नौकरी में आ गए, अब सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अब उनको क्या मालूम कि जनता को अब क्या चाहिए। ठीक है, जब वो आए थे नौकरी में तो थोड़ा बहुत जानते भी थे, और वो कह लीजिए यंग एज से पहले की सब का वक्त था, तो उतनी गहराई से भी नहीं जानते थे कि पब्लिक क्या जानती है, क्या चाहती है। तो ये जानते हैं, तो यानी कि ये पब्लिक विल को रिप्रेजेंट करते हैं, यही डेमोक्रेसी है, राइट। अब जो ब्यूरोक्रेसी है, अब वो क्या होगा, कैबिनेट के लिए गए निर्णयों को इन्हें लागू करना होगा। अब एक तीसरा विंग होता है मित्रों, जिसकी बहुत कम चर्चा होती है, अब थोड़ी सी चर्चा होने लगी, वो है विशेषज्ञों की, जिसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, सब्जेक्ट के जानकार होते हैं। जैसे मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर है, तो आईएएस ऑफिसर प्रशासन के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, व्यवस्था कैसे की जाती है, कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाता है, आदेश कैसे पारित किए जाते हैं, सिस्टम को कैसे फॉलो, उन सारी चीजों की विशेषज्ञता उनके पास है। लेकिन अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है इसकी जानकारी नहीं है, चाहे देखिए फाइनेंस सेक्रेटरी हो, कोई भी हो, वो लिमिटेड है। अगर उनकी विशेषज्ञता थोड़ी बहुत फाइनेंस में चलिए है भी, तो वो लिमिटेड है। हो सकता है कि वो फाइनेंस के बारे में हार्वर्ड से पढ़ करके आए हों, उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स से किया हो सकता है, लेकिन जब किया था तब किया था, और अब जब वो सेक्रेटरी बने हैं तो 30-35 साल का दौर गुजर चुका है, इस बीच में दुनिया बहुत बदल चुकी है, तो सीधे उससे तो संपर्क नहीं रह गया, तो एकेडमिक जो इंटेलेक्चुअलिटी होती है वो कम हो जाती है, और ये स्वाभाविक है, किसी के साथ भी हो। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कैसे काम करेंगे, देखिए इसे हमें समझना होगा। तो पॉलिटिकल लीडर जो बहुत ही विशेषज्ञता वाले जो विषय होते हैं, उन पर सलाह के लिए एक सलाहकार समिति, सलाहकार परिषद बना लेते हैं। जैसे कि अभी आर्थिक सलाहकार समिति बनाई गई, और ये जो समिति है ये प्रधानमंत्री जी को आर्थिक मामलों में सलाह देगी। देखिए नीति आयोग भी लगभग लगभग इसी पैटर्न पर बना हुआ है, वो ढेर सारे मामलों पर सलाह देगी, सारी चीजों पर सलाह देगी, और ये जो आर्थिक परिषद है ये आर्थिक मामलों पर सलाह देगी। देखिए जो आर्थिक जो मामले होते हैं मित्रों, मुझे लगता है कि सर्वाधिक जटिल मामले होते हैं, सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं वो अर्थव्यवस्था है। आपको लगता है कि आप ये कदम उठाएंगे और ऐसा हो जाएगा, राइट। आप कदम उठाते हैं, शुरू में लगता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद देखते हैं कि वैसा तो नहीं हो रहा है, बल्कि सच पूछिए जो कुछ हो रहा है वो तो वो हो रहा है जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की थी, या वो हो रहा है जिसको आप रोकना चाह रहे थे, जिसके बारे में आप चाह ही नहीं रहे थे कि ये हो, वो हो रहा है। क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है ना, वो बड़ा विचित्र किस्म का बिलियर्ड्स का गेम होता है। अगर आपने कहीं बिलियर्ड्स देखा हो, कि आप एक हिट करते हैं, एक किसी गोटी को हिट करते हैं, बॉल को हिट करते हैं, छोटे छोटे बॉल होते हैं, आप देखिए आप एक बॉल को हिट करते हैं, लेकिन आपका उद्देश्य उस बॉल को हिट करके इन करना नहीं होता है। आप एक बॉल हिट करते हैं, वो बॉल मूव करती है, वो आगे जाकर के दूसरे बॉल को हिट करती है, फिर वो जो दूसरी बॉल है वो मूव करती है, फिर वो तीसरे बॉल को हिट करती है, और आपको बकायदे जानकारी रहती है कि मैं इस बॉल को हिट करूंगा तो ये लेफ्ट में टर्न लेगी, तभी वो जाकर के उसको हिट करेगी, और वो फिर राइट में टर्न लेकर के नीचे की तरफ जाएगा तो उसको हिट करेगा, उसके किनारे हिस्से को हिट करेगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, और आपका कैलकुलेशन जितना सही होता है उतना मान करके चलिए कि आपका निशाना सही था। तो इन ये जो जटिलताएं हैं, इन जटिलताओं को अर्थशास्त्री समझ सकते हैं, वो इनको जानते हैं कि एक जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो इनफेक्ट किस तरीके से काम करती है। पॉलिटिशियन नहीं जान सकते। पॉलिटिशियन तो ये बताते हैं कि भाई देखिए हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा किया जाए, हमारे लोगों को ये चाहिए, और वो उन्होंने घोषणा पत्र में पहले से घोषित कर दिया था। तो इसीलिए देखिए कि जो पॉलिटी काम करती है, यहां अब आप समझ लीजिए, मैं अब इसको समअप कर रहा हूं, पॉलिटी जो काम करेगी कितने स्तर पर करेगी। पहली बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी कैबिनेट है, डेफिनेटली अपने पॉलिटिकल पार्टी से संपर्क में रहेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ही सत्ता में आए हैं, और पॉलिटिकल पार्टी जनता के बीच में वायदा करके आई है और वो जनता के बीच में जा भी रही है। तो पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस करेंगे कि भाई बताइए क्या चाहिए पब्लिक को और कैसे किया जाना चाहिए। एक स्तर पर हो गया। इसके बाद दूसरे स्तर पर वो समिति से चर्चा करेंगे, समिति क्या कहती है, वो क्या सुझाव देती है, समिति को बता देंगे कि देखिए हमको, हमारे लोगों को ये चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी से सलाह मशविरा करके उन्होंने समिति को बता दिया, समिति ने उसके आधार पर एक रूपरेखा बना करके दे दी, अपनी रिकमेंडेशन दे दी, सिफारिशें दे दी कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो जो आप चाह रहे हैं वो हो सकता है। फिर जब समिति से रिकमेंडेशन हो जाएगा तो फिर सरकार उस पर विचार करेगी, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं, राइट। तो जब कैबिनेट में वो पारित हो जाएगा तो या तो अब संवैधानिक प्रावधान देखना होगा, या तो उसके लिए जरूरी होगा कि विधेयक पारित कराया जाए, तो फिर पूरा देश उस पर विचार करेगा, या कैबिनेट सीधे सीधे उसको प्रशासन को सौंप देगी। अब यहां पर प्रशासन आ जाएगा कि भाई देखिए ये है, आप इसे यूं लागू कीजिए, और वह चीज एक्शन में आ जाएगी। तो इस तरीके से मित्रों प्रशासन और पॉलिटी दोनों मिलकर काम करती हैं। तो मुझे लगा कि इस इशू के आधार पर मुझे थोड़ी सी इसका जो इनर वर्किंग सिस्टम है, आंतरिक कार्य करने की जो प्रणाली है, उस पर प्रकाश डालना चाहिए। तो मित्रों न्यूज में तो इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर का सवाल है, मैं कुछ क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। मित्रों मुझे एक मेल मिला है शशांक निगम का, जिन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि वो कहां से हैं, लेकिन लिखते तो बहुत अच्छा होता। मैं आप लोगों से अक्सर रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप मेल लिखते हैं तो प्लीज उसमें अपने स्थान और अपने स्टेट का नाम लिखिए, अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा सुन करके, कि आइडेंटिफाई हो जाएंगे कि अच्छा मैं इस जगह से हूं। नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने एक बात लिखी है कि यूपीपीसीएस का भी प्री का एग्जाम हुआ होगा, तो उन्होंने लिखा कि उसमें बहुत से क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे जिनका डेली ऑडियो में आपने बहुत विस्तार के साथ चर्चा जिनकी की है। तो चलिए मित्रों, ये हमारी टीम के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जो कुछ भी आप लोगों के लिए कर पा रहे हैं उससे आपको लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। तो यही हम लोगों का सबसे बड़ा इनाम है और यही आत्मसंतोष का आधार भी है। तो इसके लिए मैं, इस सूचना के लिए मैं शशांक को बहुत बधाई देता हूं और उनकी सफलता की शुभकामनाएं भी करता हूं। तो मित्रों सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति बहुत बहुत आभार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, विवेक दुबे गढ़वा झारखंड से, पृथक जैन, नंद किशोर बेगूसराय बिहार से, शमशेर अली तनवर, सत्येंद्र कुमार प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, सिद्धांत जैन भोपाल से, और मोहित मीना। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।